आखिर वो दिन आ ही गया जब इशिका को अपनी पहचान सबके सामने बतानी थी। मीटिंग में जाने से पहले वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। वहां उसके अलावा R&D डिपार्टमेंट के ग्रुप 2 के लोग भी खड़े हुए थे जो इशिका के बारे में गॉसिप कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने इशिका और अभिमन्यु के रिश्ते की बात उठाई। लिफ्ट आने पर वो लोग तो वहां से चले गए थे, लेकिन पृथ्वी और अभिमन्यु ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। अभिमन्यु के चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अभिमन्यु को भले ही कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन पृथ्वी के चेहरे के भाव सख्त हो रहे थे। वो अपने बॉस की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अभिमन्यु से कहा, वो लोग मिस सिंघानिया के जरिए आप पर वार करना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि आपका और मिस सिंघानिया का कोई रिश्ता है, और मिस सिंघानिया की बातों ने आज इसे कन्फर्म भी कर दिया। वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? अभिमन्यु अभी भी बिल्कुल चुप था। अभिमन्यु बस चुपचाप प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पृथ्वी इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। वो उसके पीछे आते हुए वापस बोला, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं? वो सबके सामने ये दावा कर रही थी कि आपका उसके साथ कनेक्शन है, और अब सब लोग आपके रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभिमन्यु ने बेपरवाही से कहा। फर्क पड़ता है, इससे आपकी इमेज खराब होगी। मुझे यही लगता है कि आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने सबके सामने उसका फेवर किया तो सबको यही लगेगा कि आप उसके लिए कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो रहे हैं। आपकी इमेज खराब होगी। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? पृथ्वी ने अपनी तरफ से अभिमन्यु को समझाने की कोशिश की, हालांकि बोलते वक्त वो थोड़ा अग्रेसिव हो गया था। अभिमन्यु ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और सख्त आवाज में कहा, वो लोग कमजोर होते हैं जिन्हें दूसरों की बातों से फर्क पड़ता है। पृथ्वी चुप हो गया था। पृथ्वी ने पहले उनके फ्लोर का बटन दबाया था, लेकिन अभिमन्यु ने लिफ्ट का वापस बटन दबाया। पृथ्वी ने देखा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जा रहे हैं, जहां अक्सर इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती थी। इसका मतलब साफ था, अभिमन्यु अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। आज R&D डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। पिछले महीने 2 इम्पॉर्टेंट लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। डॉक्टर मर्चेंट, जो नक्श के जरिए जुड़े थे, दूसरी इशिका, जो अभिमन्यु के जरिए वहां पर आई थी। सबकी निगाहें आज होने वाली मीटिंग पर टिकी हुई थीं। पृथ्वी ने मन ही मन कहा, काश डॉक्टर मर्चेंट के साथ पर्सनली कोई कॉन्टैक्ट होता तो आज की जंग हम ही जीतते, वो भी शानदार तरीके से। लगता है आज मिस सिंघानिया की वजह से बहुत बेइज्जती होने वाली है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इशिका R&D डिपार्टमेंट के ग्रुप 1 की तरफ जा रही थी कि तभी उसे पीछे से ओजस ने आवाज़ दी। इशिका वहीं पर रुक गई थी। ओजस उसके पास आकर बोला, मिस सिंघानिया, मैं नहीं जानता कि आपका हमारे नए बॉस के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन उनकी इमेज यहाँ अच्छी नहीं है। हो सकता है कि उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए, तो बेहतर होगा कि आप मिस्टर नक्श राजवंश को नाराज ना करें। इशिका ने ओजस की तरफ घूर कर देखा। वो नक्श के लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल था। वो ज्यादातर उसके साथ ही रहता था, तो और उसकी बातों से ये साफ था कि उसे इशिका और नक्श के बारे में पता था। इशिका को चुप देखकर ओजस ने आगे धीमी आवाज में कहा, अगर आप मिस्टर नक्श राजवंश का साथ देती हैं तो आपका ही भला होगा, फ्यूचर में भी और अभी भी। अभी भी मौका है, घुटने टेक दीजिए, आज आप बच सकती हैं। इशिका ने गुस्से से उसे देखा और बिना कुछ बोले आगे चली गई। हमेशा वीकेंड के बाद मंडे को सभी एम्प्लॉयज काफी दुखी होकर और धीरे धीरे ऑफिस आते थे, लेकिन इशिका ने देखा कि आज सब पहले से ही आए हुए थे। वो समझ गई थी कि वे सब उसके लिए जल्दी आए थे। वे सब इशिका के लिए परेशान थे और उसके हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी लक्ष्य आगे आया और बोला, इशिका, वो यूनिवर्सिटी में। अचानक लक्ष्य बोलते हुए रुक गया था, क्योंकि उसने देखा कि डायरेक्टर और नक्श वहीं आ रहे थे। वहां आते ही डायरेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, मिस्टर रोहन राजवंश, मिस सिंघानिया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चलिए, मीटिंग शुरू हो रही है। रोहन ने उनकी बात पर सिर हिलाया और फिर इशिका से कहा, चलो चलते हैं और घबराना मत। वो सभी लोग एक साथ लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। अचानक नक्श इशिका के पास आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगा पिछले 2 दिनों में तुम मुझे कॉल करोगी और माफी मांगोगी। तुम ऐसा करती तो ये सब यहीं पर रुक सकता था। नक्श कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। इशिका ने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर नक्श आगे बोला, इस मीटिंग में कुछ खास गेस्ट भी आने वाले हैं। ओशन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट के डीन इस मीटिंग में शामिल होंगे। उन तक डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चोरी होने का मामला पहुंच चुका है। वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकालना चाहते हैं, इसलिए खास इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। इशिका के बचाव के लिए रोहन हंसते हुए बोला, जरूर तुमने ही उन तक ये न्यूज पहुंचाई होगी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों की तरह कंप्लेन लेकर आज भी अपने प्रिंसिपल के पास जाते हो। ग्रो अप नक्श राजवंश। मैं उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था और इशिका आज भी वहां पढ़ती है। मैं नहीं चाहता यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन इशिका की वजह से खराब हो। वो आज भी वहां की स्टूडेंट है, तो उन्हें इस मामले में जानने का हक था। बस तभी मैंने बताया, नक्श ने कंधे उचकाकर कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही मैं कुछ एक्सेप्ट करने वाली हूँ, इशिका सख्ती से बोली। नक्श उसे देखकर मुंह बनाकर रह गया। अगले ही पल वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे। डायरेक्टर और नक्श पहले मीटिंग रूम में चले गए। इशिका अंदर जाने लगी तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, आज यहाँ जो भी हो मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, चाहे सामने डॉक्टर मर्चेंट ही आकर क्यों ना खड़े हो जाए। इतना कहकर रोहन अंदर चला गया। वहीं इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो धीरे से बोली, लेकिन इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं है। इशिका काफी शांत और कॉन्फिडेंट थी। जैसे ही इशिका ने अंदर कदम रखा उसने देखा मीटिंग रूम में राजवंश एम्पायर के वो सभी मेंबर्स मौजूद थे जो कंपनी को लेकर फैसला करते थे। वहां यूनिवर्सिटी के डीन और डायरेक्टर भी बैठे हुए थे। अचानक इशिका की नजर अभिमन्यु पर गई जो कि अपना सारा काम छोड़कर वहां पर उस मीटिंग में आया था, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सभी के चेहरे के भाव गंभीर थे। इशिका के अंदर आते ही अभिमन्यु ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत ही उसने अपनी नजरें हटा ली, मानो उसे उसके आने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अभिमन्यु के पास में पृथ्वी भी खड़ा था जो इशिका को गुस्से में घूर रहा था। अभिमन्यु की तरफ देखते हुए इशिका ने मन ही मन कहा, तो तुम्हें मेरी केयर है तभी तुम इस मीटिंग में आए हो। अगर तुमसे पूछा तो तुम यही कहोगे कि दादी परेशान ना हो जाए इसलिए तुमने ये मीटिंग अटेंड की और मेरा साथ दिया। आखिर क्या है तुम्हारे दिल में अभिमन्यु राजवंश, जो तुम कहने से डर रहे हो? इशिका सोच रही थी कि अभिमन्यु अपनी हरकतों की किस तरह से सफाई देगा। वो अंदर आई और मुस्कुराते हुए रोहन के पास वाली सीट पर बैठ गई थी। मीटिंग शुरू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड आगे आया और बोला, आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग किस वजह से हो रही है, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा। मिस्टर नक्श राजवंश, आप जिन सबूत की बात कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सबके सामने पेश करें ताकि जल्द ही फैसला हो सके। इशिका ने उत्सुकता से नक्श की तरफ देखा। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि वो किस सबूत की बात कर रहा है। नक्श अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, हाँ वो बस अभी आ ही रहे हैं, बोलते हुए उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया।
इशिका ने देखा दरवाजे से आयशा और मालविका आ रही थी। उन दोनों का वहां होना कोई अच्छी बात नहीं थी। इशिका ने उन्हें देखकर अपनी आंखें छोटी की। वो खुद को तैयार करने लगी वहां होने वाले तमाशा के लिए। वो दोनों नक्श की तरफ बढ़ी। आयशा ने मुस्कुराकर नक्श को धीरे से हेलो कहा। मालविका इतने बड़े लोगों के बीच पहले डर रही थी, फिर तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया था। नक्श मालविका के पास आया और बोला, यही मेरा सबूत है, ये मालविका दास है, मिस इशिका सिंघानिया की मॉम। मालविका इस मीटिंग के लिए कुछ खास ही तैयार होकर आई थी तो वो अजीब लग रही थी। हर कोई हैरानी से मालविका को तो कभी इशिका की तरफ देखने लगा। रोहन ने धीरे से इशिका को कोहनी मार के कहा, क्या ये तुम्हारी मॉम है? इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ कस ली थीं। इशिका वहां शांत बैठी हुई थी तभी अचानक मालविका उसके पास दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, इशिका बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा काम ठीक से नहीं कर पाई। उसे वार्ड में कैमरे लगे हुए थे, जब मैं तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट चुरा रही थी तब सब रिकॉर्ड हो गया, हम पकड़े गए हैं बेटा। फिर आयशा ने एक USB नक्श को दी और सामने लगे बड़े से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले हुआ। वो एक CCTV फुटेज थी जो राधिका के कमरे की थी। राधिका सो रही थी और मालविका वहां चुपके से आई। उसने इधर उधर देखा और फिर आयशा के लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव डाली। उसने कुछ किया और फिर वहां से चली गई। वीडियो खत्म होते ही आयशा ने कहा, मैंने मॉम के रूम में कैमरा इंस्टॉल करवाया था ताकि ध्यान रख सकूं कि वो सही से दवाइयां ले रही हैं या नहीं। मुझे नहीं पता था कि इशिका तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। तुमने अपनी मॉम को मेरे लैपटॉप से प्रोजेक्ट चुराने के लिए भेजा। आयशा के कहते ही मालविका ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी अभी अभी ग्रेजुएट हुई है, वो बहुत मेहनत कर रही थी और मैं ये देख नहीं सकी। फिर मालविका ने इधर उधर देखा और ज़मीन पर अपने घुटने टेक दिए। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखकर बोली, ये जो भी हुआ है उसमें इशिका की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप पुलिस मत बुलाइएगा, आप उसे एक और मौका दीजिए, वो आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड उसके पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उठाने लगा। वो बोला, प्लीज़ खड़े हो जाइए मैम। मालविका ने नामे सिर हिलाकर चिल्लाकर कहा, नहीं मैं तब तक नहीं खड़ी होंगी जब तक आप लोग मेरी बेटी को माफ़ नहीं कर देते, मेरी इशिका की कोई गलती नहीं है। वहां बैठे सभी मेंबर्स मालविका की तरफ दया से देखने लगे। वो आपस में फुसफुसाने लगे, इशिका चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो लेकिन उसकी माँ उसे इतना प्यार करती है कि उसके लिए किसी भी हद तक चली गई। नक्श अपनी जगह से खड़ा हुआ और इशिका की तरफ देखकर पूरे घमंड से बोला, इशिका सिंघानिया क्या आप कुछ और है तुम्हारे पास कहने के लिए, या ये सबूत देखने के बाद तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? वहीं पास खड़ी आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने इशिका को अच्छा जवाब दिया था मालविका को अपने साथ मिलाकर। अगर इशिका ऐसे मौके पर इस इल्ज़ाम के लिए ना भी कहती है तो सब उसे ही गलत समझेंगे कि वो अपनी माँ को मुसीबत में डालकर खुद पीछे हट गई। सब इशिका को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। इशिका वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी, उसकी नज़रें अपने मोबाइल पर थीं। तभी दिशांक का मैसेज आया। उसने लिखा, डोंट वरी बॉस, मैं बस वहां पहुंचने वाला ही हूँ। मैसेज देखने के बाद इशिका ने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा। उसने उन सब की तरफ देखा। उसकी खुद की बायोलॉजिकल मदर उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। इशिका को मन ही मन बहुत घुटन हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इसकी आदत हो गई थी। इशिका ने आयशा की तरफ देखा। वो अपने मन में बोली, मेरी क्या गलती रही है जो हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है और आयशा से ये प्यार से पेश आती है। आखिर ऐसा किया क्या है आयशा ने जो ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो, एक बार दिशांक के आने के बाद तुम सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इशिका ने खुद को शांत रखने का फैसला किया। इशिका बस दिशांक के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसकी आइडेंटिटी को सबके सामने प्रूफ कर सके। वैसे भी इशिका इस वक्त कुछ भी कहती तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इशिका जरूर शांत थी, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो चुप बैठने वाला नहीं था। रोहन अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, ये किस तरह का आधा अधूरा सबूत है? इशिका की मॉम ने आयशा के लैपटॉप से कुछ कॉपी किया है, लेकिन क्या कॉपी किया है ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है। उसकी बात सुनकर नक्श ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने टीममेट की गलती पर इस तरह पर्दा डालोगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि आयशा ही वो शख्स थी जो डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट हम तक पहुंचाने वाली थी। उसके लैपटॉप में डॉक्टर मर्चेंट के प्रोजेक्ट के अलावा और क्या हो सकता था? उन्होंने वही कॉपी किया था, तभी इशिका के पास वो प्रोजेक्ट पहुंच गया और उसने सबमिट करवा दिया। काफी अच्छे से इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर सच बदल नहीं सकता। ओ रियली? रोहन ने भौहें चढ़ाकर कहा। मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ? मैं बस तुम्हारे पेश किए हुए सबूत पर सवाल उठा रहा हूँ। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इशिका ने ही अपनी मॉम को वो प्रोजेक्ट कॉपी करने के लिए कहा था? रोहन की बात सुनकर मालविका फिर से रोते हुए बोली, हाँ ये सही कह रहे हैं, इशिका ने मुझे चोरी करने के लिए नहीं कहा था। प्लीज मेरी बेटी को काम से मत निकालना, वो अभी अभी ग्रेजुएट हुई है, उसकी कोई गलती नहीं थी। बोलते हुए मालविका उठी और अपने पास खड़े एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बाजू पकड़कर बोली, आप मेरी बेटी को काम से तो नहीं निकालेंगी ना? उसने कुछ नहीं किया है, मेरी बात का यकीन कीजिए। मालविका इस तरह से बात कर रही थी मानो सब कुछ उससे इशिका ने ही करवाया है और वो बस उसकी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इशिका गुस्से से उसे घूर रही थी, बस उसे इंतजार था तो दिशांक के आने का। ... अगले चैप्टर तक दिशांक आ जाएगा और देखते हैं क्या होता है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।